ज़रूरत इस बात की है कि हम थोड़ा सा देखें कि तज़किया नफ्स क्या होता है। चलिए आपको एक छोटा सा टॉपिक देती हूँ, तज़किया का नोट्स लीजिए कि आखिर ये सब करने की ज़रूरत क्या है हमको। यानी टॉपिक क्या है? तज़किया नफ्स, किरदार साजी की अहमियत क्या है। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़द अफलह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने इसे मिट्टी में मिला दिया वो नाकाम और नामुराद हो गया। तज़किया नफ्स हमारे कल्चर में बड़ा मारूफ लफ्ज़ है, बहुत सारे लोग इसको सुनते, समझते, पढ़ते, गौर व फिक्र करते। ये होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं? ये दीन और दुनिया कोर्स असल में तज़किया नफ्स का कोर्स है। आपके मेरे अंदर बाहर की आलाइशें दूर हो जाएं, गंदगी दूर हो जाए, और हम जिस तरह अंदर से अपने आप को बीमारियों से पाक रखना चाहते हैं, इसी तरह हम बाहर से भी बीमारियों से अपने आप को पाक करें। देखिए सूरत अल असर आपने, मैंने, बीसियों ने सैकड़ों बार पढ़ी होगी। वलअस्रिन अल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लज़ीन आमनू वामिलुस्सालिहाती वतवासो बिलहक्की वतवासो बिस्सब्र। ज़माने की कसम कि इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अमल साले किया, एक दूसरे को हक बात की नसीहत की और उस पर सब्र किया। कामयाबी का इन्हिसार, इंसान की निजात का इन्हिसार चार चीज़ों पे है। लिखिए, अब ये नोट्स लीजिए, मैं आपको जो बातें कह रही हूँ, कल इसका होमवर्क आपने माइंड मैप्स की सूरत में बना के लाना है। इधर जो लोग मौजूद हैं, आपको एक्टिविटीज़ भी कराई जाएंगी, आपकी मुहासबा शीट्स भी होंगी, आपके ग्रुप सेशंस भी होंगे, क्योंकि आपने इस चीज़ों को यहाँ सीखना है और बाद में जाकर घर में माओ ने अपने बच्चों की टीचर बनना है, टीचर्स ने तो वैसे ही टीचर बनना है, और हम जो स्टूडेंट्स हैं हमने भी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को लाना है कि मेरा किरदार किस काबिल है। क्या मेरे अंदर कशिश है कि कोई मेरी बात सुने? क्या मेरे अंदर ईमान का वो वज़न है कि 10 लोग एक बात कह रहे हैं और मेरी बात उससे भारी हो जाए? कामयाबी के लिए इंसान को जिस चीज़ के साथ जोड़ दिया गया वो ईमान और अमल साले है। ये इनफरादी कामयाबी होती है। इज्तमाई कामयाबी क्या है? तवासी बिलहक व तवासो बिसबर। हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। एक माँ को अपने बच्चों के ऊपर अपना असर छोड़ना है, एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स पे अपना असर छोड़ना है, एक बीवी को अपने शौहर पे कुछ ना कुछ असर छोड़ना है। शौहर का ना चाहते हुए भी रंग रूप बीवी पे पड़ता है। इसी तरह दोस्ते और साथी। अब यहाँ क्या पता चला कि जब किरदार इतना अहम है तो किरदार की इसलाह किस में है? कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। सूरत शम्स की आयत 9 और 10 में है कि जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया वो कामयाब है और दूसरा नहीं है। फिर आप 3 आयतें नोट कीजिएगा। सब चीज़ें आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं लिखेंगे आप कभी भी उससे फोकस नहीं होंगे। लिखिए 3 जगह, सूरत तौबा 33, सूरत फतह 82 और सूरत सफ आयत नंबर 9। अल्लाह ने नबी सल्लम का मकसद बेसत, आपको इस दुनिया में क्यों भेजा? आप तसव्वुर में लाइए कि नबी सल्लम एक मुअल्लिम थे और आपने खुद एक हदीस में फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे तो एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। यानी नबी सल्लम एक रसूल भी थे, नबी भी थे, मुअल्लिम भी थे, मुरब्बी थे, तरबियत करने वाले, मुज़क्की थे, तज़किया करने वाले थे। आपके दुनिया में भेजे जाने का मकसद, और जो शुरू में बात छेड़ी है कि आपने सहाबा की इतनी प्यारी तरबियत किस सिलेबस और किस एजेंडे के तहत की थी, तो वो वही थी जिसका जिक्र है कि जिसको फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहुल दीन कुल्लिही वलो करिहल मुशरिकून, के नबी सल्लम ने गलबा इस्लाम का जो काम किया उसमें युअल्लिमुहुमुल किताब था, किताब पढ़ाई, हिकमा हिकमत सिखाई, व युज़क्कीहिम तज़किया किया। 3 आयतों के नंबर जो बोले हैं जाकर नोट कीजिएगा, इसमें एक लफ्ज़ कभी किसी में पहले या किसी में बाद में, युज़क्कीहिम। आज हमारे स्टाइल ऑफ लर्निंग और टीचिंग में जो चीज़ मिसिंग है वो तज़किया है। इस्लामियात के नाम पे पहली जमात से बच्चे ने भी इस्लामियात की किताब पढ़ी है और बड़े ने पढ़ी, और मैंने इस यहाँ आकर सिलेबस मंगवा के देख लिया कि एफ़ए और बीए तक में भी इस्लामियात एज ए लाजमी सब्जेक्ट है। ऐसे ही है, इस्लामियात को एक लाजमी मजमून के तौर पर पतली सी किताब की सूरत में तो पेश कर दिया एक मुसलमान मुल्क के तालीमी उमूर को चलाने वालों ने, लेकिन पढ़ाने वाली वो शख्सियात नहीं बन सकी कि जो उन चीज़ों को तज़किया की बुनियाद पर पेश करें। एक बच्चा तो छोड़ दीजिए, मैंने तो ये तक देखा है कि एमए कर लीजिए। देखिए, मैंने खुद भी मास्टर्स इस्लामियात में किया आपके इस मुल्क में। मैं शर्मिंदगी के एहसास के साथ सर झुका के कहूँगी कि जब मैंने मास्टर्स किया और इस्लामियात में किया, और आज उस मास्टर्स के लफ्ज़ को लोग कई दफ़ा, कई जगह, कई प्लेटफॉर्म है, हमारे ज़िंदगी के बहुत से डायमेंशन हैं, लोग कहते हैं आपने मास्टर्स किया, तो मैं सर शर्म से झुकाती हूँ। आज भी तफसीर के नाम पर जो हमारे पास यहाँ कोर्स चलता है इस प्लेटफॉर्म पे, उसको सबीलुल जन्ना हम कहते हैं। एक सुपारा सबीलुल जन्ना का एक बच्ची इस हॉल में आकर जब करेगी इंशाल्लाह, सिर्फ एक सुपारा, सूरत बकरा नहीं कह रही, एक सुपारा, उस एक सुपारे से मास्टर्स कर लेना इस्लामिया स्टडीज़ में, उससे ज़्यादा तज़किया हो जाता है। मैं नहीं कहती उसको लफ्जी तर्जमा आ जाएगा सारा, मैं नहीं कहती सरफ़ो नहव आ जाएगा, ग्रामर अच्छी होगी, तजवीद अच्छी होगी, उसके कलकले अच्छे हो जाएंगे, मैं कोई दावा नहीं करती, पर इतना मैं कह सकती हूँ कि 18 से 20 क्लासेस होती हैं एक पारे की हमारी, उसके अंदर इतनी दफ़ा बंदे को अपनी और अल्लाह की बात और आखरत का जिक्र सुनने को मिलता है कि बंदे का तज़किया हो जाता है। जब मैंने मास्टर्स किया तो मैं कहती थी, इसको कहते हैं मास्टर्स, शर्म का मुकाम है मेरे लिए। यकीन करें, बग़ैर पढ़े आप मास्टर्स कर सकते हैं इस मुल्क का। सूरत तौबा जो मेरी फेवरेट सूरत है, और आज भी आपको अगर किसी को कुछ रेकमेंड करना है तो सिर्फ सूरत तौबा की तफसीर कर दीजिए, किसी सेट की सुन लें, ये सूरत तौबा उस क्लास में भी मौजूद थी मास्टर्स में, उसका अंदाज़ ही कुछ और है। इतने मुश्किल लफ्ज़, टीचर्स नहीं है लोगों के पास पढ़ाने के लिए। आपके इस मुल्क की गवाहियाँ मेरे पास मौजूद हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। लोगों ने कहा कि इस्लामियात की क्लास में बच्चे आते ही नहीं, सिर्फ उनको खाना पूरी करनी, वजह क्या है? बोरिंग। मेरे गुनाहगर कानों ने इस रमज़ान में ये जुमला सुने आपके शहर में, कि इस शहर में स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए इस्लामियात टीचर्स अवेलेबल नहीं है। काल पड़ गया, नए मुस्लिम हैं हम क्या? क्या ये रिवर्ट लोगों का मुल्क है? और अगर है तो बोरिंग। हर सब्जेक्ट डेली है, 6 डेज अ वीक, और इस्लामिया सिर्फ 3 डेज अ वीक है, और सिर्फ बच्चे रोलका लगाने को आते हैं बाहर, है वजह क्या है? कि हमने इनका तज़किया नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लम की सबसे बड़ी खूबी क्या थी, लिख लीजिए, आपने अफराद तैयार किए। सहाबाए कराम की जमात एक ऐसा गिरोह तैयार हुई कि जिनकी तरबियत तज़किया की बुनियाद पर हुई। नबी सल्लम का ये कारनामा 4 जगह कुरान में, आयतों के नंबर नोट करें, आपका होमवर्क है कि आपने इन आयतों को घर जाकर इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अपने नोट्स में अरबी उर्दू तर्जमे में लिखना है। सूरत बकरा 129, 151, आले इमरान 164 और सूरत जुमा आयत नंबर 2। आप देखिए कि इन 4 जगहों पे नबी सल्लम ने जिस मेथडोलॉजी को यूज़ किया था उसका तज़किरा है, और इसमें तज़किया नफ्स को सरे फहरिस्त हासिल है। नबी सल्लम के तज़किए के नतीजे में सहाबा कराम में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, जवाबदही पैदा हुई। एक तरफ वो रातों के राहब बन जाते हैं और दूसरी तरफ दिन के शख्सवार हैं। कुलाफ नाम का एक कमांडर था गैर मुस्लिम कौम का, किसी महाज पे मुसलमानों की उसके साथ जंग थी। उस दौर में चूंकि बिजली रात को नहीं होती थी तो शाम के करीब जंग को वाइंड अप कर देते थे, तुम अपने कुछारों में चले जाओ, तुम अपने मोर्चों में चले जाओ, सुबह आके फिर लड़ेंगे। कई जगह तो देखा गया रातों में एक दूसरे को खाने पानी भी भेजते थे कि लड़ाई अपनी जगह, लेकिन तुम भी बाहर आए हुए हो, हम भी चलो खाना तो खाएं। एक शख्स था कुलाफ, उसको एक दिन ख्याल सूझा कि ये मुसलमान जो सारा दिन हमारी आंखों में आंखें डालते हैं, बहादुर, गयूर, जियाले, ज़रा मैं देखूँ ये रातों में क्या करते हैं। उसने रात को चारों तरफ अंधेरे अंधेरे में, क्योंकि मुखबरी करनी थी ना, लश्कर इस्लाम का एक राउंड लगाया कि देखूँ कि इनकी रात की सरगर्मियाँ क्या हैं। खैर, जब वो लश्कर इस्लाम के थोड़ा थोड़ा करीब होता गया, करीब होता गया, तो उसको ऐसे लगा कि इस लश्कर इस्लाम में से शहद की मक्खियों की बिन बनाहट की आवाज़ आ रही है, जैसे ऐसे आवाज़ें आ रही हैं। उसको तजस्सुस हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, और करीब आया, थोड़ा और करीब आया, और जब उसने कान लगा कर सुने तो सहाबाए कराम जो उस वक़्त मुजाहिदीन के रूप में एक दस्ते की सूरत में खड़े थे, वो तहज्जुद में अल्लाह को कुरान सुना रहे थे। लश्कर इस्लाम का एक एक सिपाही कुरान सुना रहा था। इतनी उसके दिल पे कपकपी और रोब तारी हुआ, वापस गया। अपनी फ़ौज और उसके कमांडर्स जो भी साथी थे उनको जमा किया, कहने लगा ये मुसलमान हम फुरसानुम बिन नहार व रुहबानुम बिल लैल, दिन को तो ये घोड़े पे बैठे शाह सवार हैं, डरते ही नहीं, और रातों को अल्लाह के खौफ से रोने वाले बन जाते हैं। कहने लगा कि मैं तुम्हें कहता हूँ वापस चले जाओ, मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि मेरा इस लश्कर से वास्ता पड़े और हम जीतें, मेरी दुआ यह कि हमारा इस गिरोह से कभी वास्ता ही ना पड़े। ये है वो गिरोह जो आज तैयार करना है। आज 2 बिलियन मुसलमान और लोगों ने आपको तर निवाला बनाया हुआ है। इतने रिसोर्सेज एजुकेशन पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इतनी मस्जिदें, इतने मदरसे, क्या कुछ नहीं हो गया दीन दुनिया के नाम पे, लेकिन आज हम वो नहीं रहे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे इस दौर तक पहुँचते पहुँचते दीन इस्लाम के तसव्वुरात तक मसख हो गए हैं। जो नाखूब था वो खूब हो गया, कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। आज इस्लाम के नाम पे झूठा इस्लाम और सच्चा इस्लाम आ जाए तो लोग कहेंगे कि ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। और आज अगर लफ्ज़ तज़किया नफ्स भी बोलिए तो उसका हुलिया भी बिगड़ चुका है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था कि खाक की आगोश में तस्बीह हो मनाजात, ये मज़हब मिल्ला और जमादात व नबादात। यानी वो कहते हैं कि तज़किया नफ्स भी करने बैठे हो तो कर क्या रहे हो, कुछ गैरों के तजर्बे, कुछ खुद साख्ता मुजाहदे, कुछ चिल्ले, कोई कुछ, और ऐसी बिदात और खुराफात के रास्ते खुल गए कि एक तबके ने तो इसको पूरा कारोबार बना दिया। मुझे चंद दिन पहले एक वीडियो किसी ने भेजी, मैं नाम नहीं लेती, हमारे इस प्लेटफॉर्म में किसी का नाम नहीं लिया जाता, ना तारीफ़ करते हुए ना तनकीद करते हुए, ये याद रखिए, क्योंकि मैं नाम लूँगी आप सब जान लेंगे, वो बहुत मारूफ शख्सियत है हमारे मुल्क की। बाहर के किसी मुल्क का उनका कोई लेक्चर था, और लेक्चर क्या था, जिक्र पे और उसके तरीक़ों पर। शुरू में लेक्चर था, मैंने कहा कि देखो किसी ने मुझे भेजा है तो कोई बात ही होगी, सुननी शुरू हो गई। थोड़ी सी बातें उन्होंने बड़ी अच्छी की, जिक्र अस्कार करते करते वो कहाँ बिद गए। अल्लाह के नबी की एक हदीस जो सही है, वो हदीस क्या है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, इतना करो कि लोग तुम्हें मजनू कहने लगे। एक रिवायत में तेरे अकार कहने लगे, एक में मजनू। ये हदीस उन्होंने अपने लफ्ज़ों में बड़ी बिना के सुनाई। फिर उसके बाद जैसे मैं बैठी हूँ तो इधर 3-4 लोग पहले से ही बैठे थे, उनके कुछ इधर थे, और हॉल आपसे भी बड़ा हॉल भरा हुआ नकोनक। कहने लगे कि चलें अब इस हदीस के ऊपर अमल करके जिक्र शुरू करते हैं, शुरू हो जाओ जी। जैसे अल्लाह माफ़ करे, मिसाल नहीं देनी चाहिए, पहले से वो एक्सपर्ट थे, इधर से शुरू हुआ, एक कहते अल्लाह हु अल्लाह हु, इधर बारा उसकी सुर में, थोड़ी देर में ये स्टेज पूरा हिल रहा था, हु। इसके बाद ये जो अगली लाइन है ना, इन तक उसका असर गया। यकीन करें मेरे हले, एक विद इन 1 मिनट वो हाल पूरा किस में बदल गया कि सारे ही पागल हैं और नाच, और ये अपने माइक पे कह रहे हैं और करो और करो, अभी मजनू नहीं लग रहे, अभी तुम दीवाने नहीं लग रहे, अभी तुम पागल नहीं लग रहे। पूरा हॉल वहाँ से लोग उठ उठ के गिर गिर के स्टेज पे पड़ रहे हैं। ये किया लोगों ने तसव्वुर के नाम पे। याद रखिए, तो इस वक्त ज़रूरत है, सीधी बात, बड़ा टू दी पॉइंट कोर्स है ये, सीधी सी बात है, जिसने खुद को बदलना है वो आए, जो अपनी चंद आदतों पे काबू पाना चाहता है वो आए, जो चाहता है कि आज तक की ज़िंदगी जो हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अब अगली ज़िंदगी में एक ऐसी शख्सियत अपनी बनानी है। देखिए आप माँ हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, माजरत के साथ बच्चों का कसूर नहीं आपका कसूर है, आप बीवी हैं, आपके शोहर को आपकी बात ही नहीं आज तक समझ आई, हालांकि आप उसकी रोटी पकाती हैं, आप उसके कपड़े धोती हैं, आप उसका घर साफ करती, कितनी ज़रूरत है। देखिए मर्द से तो बीवी को अगर ज़ाहरन देखा दे तो पैसा चाहिए ना, सिक्योरिटी चाहिए, ये तो मोटी मोटी बातें हैं ना, पैसे तो कोई भी दे देगा आपको, सिक्योरिटी क्या, आप घर में किसी और को, भाई को रख लें, किसी को रख लें। औरत मर्द के लिए जो कुछ करती है कोई और नहीं कर सकता, एक आधा काम तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, रोटी तो कोई भी पकाएगा। इसके बावजूद आपके शौहर आपकी क्यों नहीं मानते, कभी आपने ये सोचा? और आप अपने आइडियल में लाइए कोई किरदार, कुछ लोग इंतहाई कामयाब, भाई कहते हैं इस जैसी बहन कोई नहीं, माँ बाप कहते हैं इस जैसी बेटी कोई नहीं, और शौहर कहता है ऐसी बीवी किसी की नहीं होगी, और बच्चे कहते हैं हमारी मामा जैसी मामा कोई नहीं। कल बहुएं आके कहेंगी हमारी सास जैसी सास कोई नहीं। कभी देखा ऐसा कोई किरदार? तो पीछे चीज़ क्या, कोई जादू है? कुछ कहते हैं उनके तो नसीब ही बड़े अच्छे हैं जी, सभी उनको अच्छा, कि नसीब नहीं अच्छे, उनका किरदार अच्छा है। एक बड़ा बड़ा जुमला करके लिख लीजिएगा कि आप अपनी शख्सियत में वजन पैदा किए बगैर दुनिया में हलचल नहीं मचा सकते। छोटा बच्चा नहीं डरता आपसे, बड़ों ने कहाँ डरना। एक बंदा इशारा करे और इशारों पे लोग ऐसे खड़े हो जाएं जैसे फौजी, और दूसरा जा जा के तरले मिनतें कर ले और कोई ना माने, किरदार नहीं है। अगर आप इस दुनिया के बाकी दिन जो आपकी ज़िंदगी के हैं सेटिस्फेक्शन के साथ पुरसकून, और मैं आज के दिन आपको होमवर्क ये दूंगी, कल से शुरू होगा ना कोर्स, आज के दिन से ये चीज़ अपने लिए लिख लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी जो मौजूदा है उसमें कितनी को मुतमईन है। कई कमज़ोरियाँ, चार लोगों में हम बात नहीं कर सकते, कोई बात पेश करनी हो तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है, हमारे आंसू ही नहीं थमते, हमारा मजाक बना रहता है। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि लोग आपको खरी खरी सुना जाते हैं, आप बोलते भी नहीं आगे से, ये आपका नक्शा है? क्या ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा हल्ला घर था और मियाँ ने आकर ऐसे बदतमीजी से गुस्से में बात की कि आप बेचारी दुबक के बैठ गई? मियाँ गालियाँ बकते हैं और आप चुप करके सुन जाती हैं। माजरत के साथ, देखिए मैं आपको बिगाड़ नहीं रही, कसूर मियाँ का नहीं आपका। पहली गाली वाले दिन आपने क्यों सुनी और उनको क्यों एहसास दिला दिया आपने इस बात का कि ये अल्लाह की गाय मिल गई है, इसको रोज़ मारा भी करो कूटा भी करो और इसकी सारों के बीच में बुराइयाँ भी करो और अपनी मर्ज़ी के सारे काम भी इससे करवा लो? ये एक औरत का नक्शा है। इस्लाम ना जालिम है ना मजलूम है। ये तज़किया नफ्स कोर्स आपको एक स्ट्रॉन्ग कामयाब बीवी बनाएगा। हक नहीं मारेंगे आप किसी का, ना आपके ऊपर हक होगा ना कोई आपका हक मारेगा। नहीं दिल चाहता, मुझे तो रहम आता है उन लोगों पे जो सारा दिन काम भी करते हैं और बाद में बातें भी सुन के रोते हैं। आज 98% हमारे कल्चर की खवातीन कहती हैं इस ससुराल में तो बूढ़े हो गए, इतनी इनकी खातिरें कि ये खुशी नहीं हुए। हाय मैंने अपनी सास की बातें सुनी, नंदों के ताने सुने, मियाँ की झिड़कियाँ सुनी, सुसर के दबके सुने, फिर भी ये खुश नहीं हुए। माजरत के साथ, क्या आपकी माँ ने आपको इसलिए पेट में रखा था कि आप ये सब कुछ सुने? आपने अपनी वैल्यू नहीं पहचानी। अल्लाह ताला कहते पहले अपनी इज्जत करो। हाँ मैंने गलती की है, बोलिए तरीके से बात कीजिए, मैंने गलती की है। अब आप तो गलती ना कीजिए ना कि मेरी बात को बदतमीजी से मेरे सामने पेश करें। मैं कह सकती हूँ ये तज़किया नफ्स का कोर्स आप कर जाएंगे ना, 80% तलाक़ें और झगड़े नहीं होंगे। हर बात की तय में से जब अंदर से खोलेंगे ना, हमारी बच्चियों की शख्सियत कमज़ोर होती है या डोमिनेंट होती है, दो ही चीज़ें। देखिए अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ़ नेमतें दी है ना, इंशाल्लाह हम इस सफ़र में इसके ऊपर बात करते रहेंगे। खाने की जबिल्लत है, खाना है, सोना है, खाना है, सोना है। इस तरह कुछ स्पिरिचुअल नीड्स हैं हमारी, इबादत है, नफ्स खुशी है, ये चार चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे नफ्स के अंदर बहुत सारे दाइये हैं, हमारा खाने को भी दिल करता है, हमारा सोने को भी करता है, हमारी स्पिरिचुअल नीड्स भी हैं और हमारी फ़िज़िकल नीड्स हैं। अपनी जगह पे सब बैलेंस रहें तो आप सक्सेसफुल हैं। इनमें कोई एक, चाहे जिबिल्लत यानी दुनियावी चीज़ें या रूहानी चीज़ें, जो बढ़ेगी आगे वो ख़राब हो जाएगी। कहीं मुझे एक सिस्टर मिली, इतनी प्यारी सिस्टर, इतनी मतलब नाइस, नया नया कुरान जो दिल पर डालता है असर वही है। बाद में कहने लगी मैंने तो खाना ही छोड़ दिया, अब मैं तो मीठा ही नहीं खाती, अब मैं तो कोई अच्छा खाना होता है मैं तो खाती कोई नहीं हूँ, कि मैंने अपना नफ्स मारना है। तो मैंने कहा ये तुम्हें किसने पढ़ाया? क्या तुम अपने शौहर के लिए कोई काबिल कशिश औरत रहोगी अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी? बनाओगी मज़े का खाना, तुम खा लो, मैंने नहीं खाना क्योंकि मैं मुत्तकी हूँ, तो ये गुनाहगार लोग खाए, वो गरीब भी पता नहीं किस मुश्किल से खाएगा। नहीं जी मैंने तो रोज़ा ही रखना है, मैं आपको कह देती हूँ घर का माहौल अच्छा रहेगा। बैलेंस्ड एटीट्यूड, जब तक तज़किया नफ्स नहीं होगा, औरत और मर्द दोनों इसमें बराबर हैं। आप अपने अंदर से चुन चुन के वो करें। देखिए ना, आपने किसी बीमारी को दूर करना है या बुराई की इसलाह करनी है तो सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है? बीमारी का पता हो। आपको पहली शीट जो दी जाएगी कि आप पहले अपनी खामियां तो लिख के लाइए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो और जाए तो डॉक्टर पहले उससे पूरी हिस्ट्री नहीं लेता, सुनाएं, कब क्या कैसे हुआ, शुरू क्या हुआ, आप एक एक बात। अच्छा, कभी बचपन में गिरी थी, क्या हुआ था, कोई खौफ, कभी आपको अल्लाह ना ले जाए, मैं दुआ ही देके जाऊंगी, कभी आप साइकाट्रिस्ट के नाम पर किसी के पास जाएं, अमेरिका, कनाडा और नॉर्वे, इवन सभी जगह सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाने वाला प्रोफेशन है ना, वो साइकाट्रिस्ट होना है। आज से कई साल पहले की मिसाल दे रही हूँ, जब वहाँ मेरा है, लेकिन एवरेज पर आवर डॉलर जो था $5 थी पे, घरों में मेड्स आती हैं $5 घंटा काम करा के आप देते हैं, उस वक्त की बात बता रही हूँ, आज से ये 15 साल पुरानी बात होगी, $100 पर घंटे के साइकाट्रिस्ट चार्ज करता था। क्या टाइम लेके जाएंगे और वही जाके, और आप उनके पास बैठ, और वो करते क्या जो हम औरतें वैसे ही सारा दिन फ्री में करती हैं एक दूसरे का, होर सुना फिर की होया, अग्गों की होया, पीछे की होया, वो जिस दिन शादी होके आई थी उस दिन सास ने की किया, ये करते हैं वो बैठे रहते हैं। हमारे अपने साथी हैं वहाँ जो बेचारी ऐसी परेशानियों में पड़ी है, तो वो जाती थी तो मैं उसको पूछती थी सुनाओ क्या किया, और वो कहती थी 800 करोन दे के आई हूँ। जो जिसने 800 करोन देना है उसका तो दिल पहले ही घट जाना है। सोचिए तो सही, वो सिर्फ आपसे आपकी बातें सुनते हैं, और फिर इसी तरह जो बातें, और यकीन करें कि वो, चूंकि मेरे पास स्कूल में भी आती थी जिसका इशारा दे रही हूँ, तो उसका साइकाट्रिस्ट बड़ा इम्प्रेस था। ये बताती थी उसको कि मेरी ऐसे साथ हैं, टीचर हैं मेरे साथ हैं, मुझे वो बताती, तो वो कहता था आई वॉन्ट टू मीट हर। फिर एक दिन उसकी तबीयत कुछ ऐसी ख़राब हुई तो फ़ोन पे उसने मेरी उससे बात कराई, तो मुझे कहने लगा यू आर द लेडी शी इज़ टॉकिंग ऑलवेज अबाउट यू। मैं कहा यस। कहने लगा तुम साइकाट्रिस्ट हो? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आई एम अ कुरान टीचर, मैं कुरान टीचर हूँ। कहते कुरान इज़ बुक फॉर साइकोलॉजी, मैंने कहा यस। उसको मुझे मौका मिल गया बात करने का। वो आपकी पर्सनैलिटी की छोटी छोटी बारीकियाँ खुलवाते हैं। तो ये कोर्स जो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, आपको 30 टॉपिक बोले हैं ना, ये टॉपिक नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी के 30 परत हैं। और माजरत के साथ हमारे माशरे में ऐसी कोई पर्सनल ग्रूमिंग नहीं होती। शादियां कर देते हैं बेटियों की, बेटों की भी करते हैं, उनको भी नहीं पता शौहर कैसे बनना है, इनको भी नहीं पता बीवी कैसे बनना है। टीचर को आप हायर कर लेते हैं सिर्फ उसकी CV देखकर, या कोई एक्सपीरियंस है तो उसके साथ उसके पैसे बढ़ाते जाते हैं। कितना मशहूर है, नई नई बच्चियों को टीचर रखो, थोड़े पैसों पर राज़ी हैं, लेकिन क्या है कि वो अगली जगह से 1000 ज़्यादा मिलेगा उधर चली जाएंगी। आप वो टीचर क्यों नहीं बन जाते, चाहे आपका Day 1 है स्कूल में या आप 10 साल के एक्सपीरियंस रहे, आपके इदारे वाले आपको ना छोड़े। आप में से किसी टीचर का ये ख्वाब है? आपके बगैर इदारा ही ना चले, आपका जाना उनके सारे मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल दे, और ये आपके किरदार से होगा। कागज़ कलम पे लिखा हुआ दिलों पे लिखा हुआ नहीं होता, तो इसको ज़रा सा समझिए कि ये है क्या। मोटे मोटे लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करूँ ना, तो आप 2 लफ्ज़ लिख लीजिए। तज़किए का मानी क्या होता है, यानी आप इस कोर्स में तज़किया के नाम पे क्या सीखेंगे? पहली बात है कि बुराइयों से निजात हासिल करना, और दूसरी बात है अच्छाइयों को परवान चढ़ाना। बुनियादी तौर पे तज़किए का मकसद ये है कि इंसान गुनाहों से निजात हासिल करके नेक काम ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे। किसान की मिसाल लीजिए, गार्डनर, माली, कोई भी, आप देखिए कि बीज डालता है ना, खाद भी डालता है, लेकिन साथ साथ जड़ी बूटियाँ भी निकालता है। अगर वो बीज भी डाले, खाद भी डाले, लेकिन जड़ी बूटियों को ना निकाले तो क्या होगा? आधी खाद तो जड़ी बूटियां खा जाएंगी। आपने मैंने करना क्या है, लिख लीजिए, अच्छी आदत भी अपनानी है और बुरी आदत को छोड़ना भी है। इट्स ड्यूल एक्शन, डबल वे। अगर अच्छी आदतें आप अपना लें, बुराइयां ना छोड़ें, तो मैं उसकी एक बड़ी नागवार सी मिसाल देती हूँ। अल्लाह ना करे आप किसी हुई जगह जाकर देखें, बहुत सारे लोग हैं और कमरे में बड़ी स्मेल है, बैड स्मेल है, आप उसका फौरी हल ढूंढती हैं, जल्दी से जाएं एयर फ्रेशनर लाएं और जाकर खूब एयर फ्रेशनर वहाँ छिड़कें। एक तो लोगों को उसे खांसी होगी, नोज़िया होगा, थोड़ी देर बाद अजीब और ही कोई अजीब सी स्मेल हो गई है। आप कहते हैं एक और स्प्रे लाओ, ज़रा स्ट्रॉन्ग सा लेकर आओ, आप जाकर वो भी कर दें। आप सुनाएं, अब तो अजीब समरगोला बन गया। एकदम फिर कोई कहता है कि बात सुने, ये स्प्रे मत करें, वो देखें वो गंदगी का, इधर कोई फेंक गया कचरा, किसी बच्चे का पैम्पर खुला हुआ है, उसको उठाएं। आप उस पैम्पर को उठवा दें तो फिर बेशक खुशबू भी ना डालें, थोड़ी देर बाद आपका रूम नॉर्मल हो जाएगा। जब बुराइयाँ और बुरी आदतें नहीं छूटती, और नेक आदतें डलती हैं तो ये इब्तदाई दर्जा होता है। चंद दिन पहले किसी ने सवाल किया कि दोहरे कुरान भी सुनते हैं, सब करते हैं, फिर भी आदतें नहीं छूट रही, बदल नहीं रही, तो वजह क्या है कि हम नया नया कुरान सीखने लगते हैं ना, हम अच्छी आदतें अपनाने लग जाते हैं, वज़ाइफ शुरू कर दिए, दुआएं, इबादत, सब कुछ करने लगते हैं, लेकिन हम बुरी आदतें नहीं छोड़ते। एक तरफ बुराई छोड़े, एक तरफ खूबी बढ़ाएं, यही सहाबा का काम था। अल्लाह के नबी जैसा साइकाट्रिस्ट भी दुनिया में कोई नहीं होगा। हर सहाबी को उन्होंने ऐसे स्टडी किया जैसे स्टडी करने का हक था। और एक अच्छे उस्ताद का काम ये, यहाँ ये भी नोट कीजिए, आपके चार बच्चे हैं, मैं अफसोस के साथ कहूँगी इन चार में से तीन की शख्सियत आपने बिल्कुल मस्त कर दी हुई है। किसी को एहसास कमतरी का शिकार कर दिया, किसी को एहसास बड़ाई का शिकार कर दिया। एक माँ को इतना पता होना चाहिए कि मेरे किस बच्चे की क्या खूबी है और उसको मैंने किस तरह डील करना है। एक ज़रा दबा हुआ बच्चा तो उसको सारा दिन ताने ही देते रहना, तू तो निकम्मा, तू तो नखट्टू, वो देख छोटे को देख, वो देख कितना तेज़ है, वो देख कितने नंबर लेके आता है, तू ऐसा है। अच्छा, बड़े की शख्सियत ख़त्म कर देती, किल कर देती हैं माएँ। और जो छोटा, जो शार्प है, जो ज़रा स्ट्रांग है, उसको जाके कहना तू बड़ा होशियार है, तू बड़े को देखा कितना शरीफ है, नहीं समझे, इसके सामने उसकी तारीफें की, तो वो बेचारा जो पहले ही दबा हुआ था वो और अंडर प्रेशर चला गया, और जिसमें कोई खूबियां थी उसको जाके तकाबुल में उधर कर, या फिर इसको बिगाड़ ही दिया, सर पे चढ़ा दी, ये बच्चा बड़ा समझदार है मेरा। गलत तरीका है। आप और मैं अपनी शख्सियत पे गौर करें ना, बचपन से किसी के ताने का आज भी असर है हम पे, किसी ने हमें आर दिलाई आज भी असर है। कहते हैं ना, जो बच्चा नफ़रत में पलता है वो नफ़रत सीखता है, जिस पे तनकीद होती है वो तनकीदी मिजाज हो जाता है। जिन माँ बाप के दिल तंग होते हैं ना, उनके बच्चों के दिल इतने तंग है एक ट्रॉफी नहीं किसी को देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप कह लें कि विरासत में आप अपने बच्चे को कुछ भी दे ना दें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपने बच्चे को विरसे में जो बेहतरीन चीज़ आप दे सकते हैं वो अच्छी आदत है। और ये किसी की बात जो मैंने सुनी मुझे बहुत सच्ची लगी, 90% बच्चों में जो खूबियाँ होती हैं ना, उसका जाके पीछे सिरा देखिए माँ बाप से जुड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बाप अपने बच्चे को जो सबसे खूबसूरत तोहफा दे सकता है वो अच्छी तरबियत है। क्या आप में चाहते हैं कि मेरी तबीयत का झोल अब मेरे बच्चों में आ जाए? एक दुनिया से जाते जाते चार अकाउंट खोल जाएंगे, वो भी तनकीदी। आप देखिए जो बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, चार बहुएँ हैं घर में, चारों के अपना अपना मिजाज है। और मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे देती हूँ, यूसुफ और उनके भाई, बाप एक था, माएँ फ़र्क थी। बिनजमीन और यूसुफ एक किरदार के क्यों बने जबकि बाप सबका एक है, नबी याकूब अलैहिस्सलाम? क्योंकि माएँ फ़र्क थी। हमारे अपने ख़ानदानों में ये मिसालें मौजूद होंगी अगर आप ढूंढेंगे कि बच्चे अपनी माँ का असर ज़्यादा लेते हैं, हालांकि वो बाप के साथ ज़्यादा भी जैसा भी ताल्लुक़ हो। तो एक दुआ मेरे साथ दोहराइए जो आप सब ने कई दफ़ा मांगी होगी, आज शौर से मांगिए, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा वज़क्केहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलीयुहा व मौलाहा। इसका तर्जुमा क्या है कि अल्लाह मेरे नफ्स को इसका तकवा अता फरमा और तू इसको पाक कर दे, और तू बेहतरीन इस नफ्स को पाक करने वाला है और तू ही इसका वली और इसका मौला है। अच्छा, लफ्ज़ तज़किया बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मसला क्या है कि अगर आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना लगें कोई लफ्ज़ इसके वज़न का नहीं है, क्योंकि इसमें ज़कात, तज़किया, ज़कात, बढ़ोतरी भी है और नरिशमेंट का मानी कह लीजिए, और प्योरिटी भी है, पाक भी है। जैसे लफ्ज़ ज़कात क्या है कि आपके माल की मैल उतर जाती है और माल बढ़ जाता है। जिस समय कोई गिल्टी हो, कोई ज़ख्म है, आप उसको जब निकलवाते हैं तो उसके बाद जिस समय ज़्यादा ताकत नहीं आ जाती। उर्दू में पाकी, प्योरिटी, सफाई, ये सब महदूद लफ्ज़ हैं, इसलिए आप तज़किए को तज़किया ही कह लीजिए। बस आप कह लीजिए कि मैंने अपने आप को संवारना है। मुझे तो इसके लिए बेस्ट लफ्ज़ लगता है ब्यूटीफाई योर सेल्फ। आप एक ब्यूटीशियन कोर्स करने लगे हैं, आप खूबसूरत होंगे अंदर से भी बाहर से भी। जैसे लफ्ज़ तकवा है ना, उसको भी आप अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते कभी भी, बिल्कुल इसी तरह नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि आपके वजूद के कितने हिस्से हैं? दो, पढ़ चुके हैं ना? आप कह लीजिए कि ये कोर्स आपका आपको नफ्से अमारा की खबास्तों से बचा बचा कर नफ्से मुतमईना बनाने का सफ़र है। ये भी एक पूरा दौरे कुरान है। ये देखिए, ये बुक है, एक स्टूडेंट थी, उन्होंने दौरे कुरान 2010, जिसका मौजू ही तज़किया नफ्स था, उसको सुना और उसको इसमें लिखा। ये बुक क्या है? ये ख़जाना है। मैं तो ये कह सकती हूँ कि आपके नोट्स लेने बहुत आसान हो जाएंगे इसके बाद, लेकिन उनकी सरखरेजी को अल्लाह ने कबूल किया और उसी से ये कोर्स डेवलप हुआ। इनमें भी हम पूरा हर रोज़ एक पारे को ही डिस्कस करेंगे। ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को निखारना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हैं जो ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं? शर्मा क्यों रहे हैं? दोनों क्यों? बाहर की खूबसूरती बुरी होती है, पहले ही बहुत खूबसूरत है। मेरे दिल में बड़ा ही दर्द है उन लोगों के लिए जो दीन का काम करते हैं। मुझे वो अपनी बहनें लगती हैं। भाइयों का तो इतना तजर्बा नहीं है। मैं मदरसों में जाती हूँ, इंशाल्लाह बहुत ऐसी अच्छी अच्छी सिस्टर्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करती हैं और मुलाकातें होती हैं। मुझे बिल्कुल वो अपनी लगती हैं, जैसे सगी बहनें हों। वो किसी नाम से कर रहे हैं, वो किसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, वो किसी एक स्पेशल ग्रुप के अंडर है, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे ही होना चाहिए ना, सारे एक नाम के अंदर नहीं आएंगे। पर एक ख्वाहिश ज़रूर मेरी आती है कि ये कोई फ़ायदा ले ले, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी सिस्टर जो वाकई पढ़ने पढ़ाने से मुतल्लिक है, अगर वो आपने और अपने इंस्टीट्यूट के उन लोगों के नाम के साथ जो 8-8 7-7 साल के कोर्सेज करते हैं, अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, सारी खैर बाद में उनके मदरसे में जाएगी, सारी खैर उनकी जामिया को मिलेगी। वजह क्या है? और आपको पता है कि इस कोर्स की बेस पर डिफरेंट स्टेशन फिर वर्ल्ड वाइड बन गए, जैसे दौरे कुरान में था। कुछ लोग आज हमारे साथ कर रहे हैं, कोई कल से शुरू करेंगे, अपनी सहूलत से शुरू करेंगे। और इसमें खुशी की बात इस दफ़ा मेरे लिए यह है कि बड़े बड़े ग्रोह इदारे कि भाई हम भी अपने मदरसे में बच्चियों को पढ़ाते हैं, पर हमने देखा है कि बच्चियाँ फ़ोन सही नहीं इस्तेमाल करती, हमसे छुप छुप के दोस्तियाँ करती हैं, मैसेज करती हैं, तज़किया कीजिए। तो सारी बात का खुलासा कि हमें अंदर से भी पाक होना है, बाहर से भी पाक होना है। आप देखिए कि जिस्मानी तहारत हर एक हासिल करता है। अल्लाह ताला ने मेरे आपके जिस्म के अंदर एक सिस्टम लगाया हुआ है, मेटाबॉलिज्म होती है, हमारे जिस्म के अंदर सेलों की टूट फूट होती है ना, तो ये जो औरतों में बीमारी के दिन आते हैं ना, असल में आपको पता है ये क्या होते हैं? सारे महीने वो सेल्स जो टूटते हैं या मरते हैं उनकी ये लाशें होती हैं, गंदगी का खून जिस्म से निकल जाता है। अगर ये जिस्म में रहे ना, तो औरत का जिस्म भी मर्द की तरह सख्त हो जाए। फितरी तौर पे हमारे जिस्म के अंदर सफाई हो रही है। दिन में 2-3 बार आप वॉशरूम में जाते हैं, टॉयलेट यूज़ करते हैं, जो खाया होता है वो गंदगी से निकल जाता है, जो पिया होता है गुर्दे उसको क्लीन करके बाहर निकाल देते हैं। हत्ता कि आप देखिए कि हर मखलूक, आपने कभी सुना होगा कि बिल्ली या कुत्ता भी किसी जगह बैठता है तो पहले दुम के साथ उस जगह को साफ़ करता है। जिस्मानी तौर पे जिसको आपके फिज़िकली सेहत के एतबार से अपने आप को पाक करने का तसव्वुर इंसानों में भी है और जानवरों में भी है। यहाँ तक तो इंसान और जानवर बिल्कुल बराबर हैं कि वो साफ़ सुथरा रहना चाहते हैं। जानवर के बारे में भी सुना गया है कि गंदगी करता है तो उसके बाद मट्टी में उसको डंप कर देता है। ऐसे ही है ना, ये तो अल्लाह ने सब के बीच में रखी, लेकिन इंसान में इससे एक भड़के अगली चीज़ है, वो तज़किया करना चाहता है अपने बातिन का भी। ज़ाहरी सफाई का अमल याद रखिए कि एक दफ़ा करने से सफाई नहीं होती। आप कल नहा चुके तो क्या आज भी आप साफ़ हैं? नहीं है ना। इस गर्मी के महीने मौसम में आप कहते हैं मैं जुम्मे को नहा ली थी तो अब मैं हो गई नहीं फारग, साफ़ नहीं हो गई? नहीं, आपको हर दिन नहाना पड़ेगा, पसीने से, मट्टी से, गर्द से, गुबार से अपने आप को साफ़ करना है। आपने 4 दिन पहले दांत साफ़ कर लिए थे तो क्या अभी साफ़ है? तो अगला अमल लिखिए, तज़किए का अमल मुसलसल अमल है। सफाई करना बड़ी बात नहीं है, सफाई रखना बड़ी बात है। आप इस हाल को साफ़ करें, थोड़ी देर में कोई और आए तो सारी चीज़ें फैला जाए, नहीं, सफाई रखेंगे तो होगा। तज़किए का अमल मुस्तकिल अमल है, इसमें ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है, साथ साथ दुनिया के काम करने पड़ेंगे और साथ साथ अपने इस वजूद को खूबसूरत करना पड़ेगा। दूसरी बात एक नोट करें जो आप सफ़र अपने लिए शुरू करेंगे, वो क्या है, ये एक वक्त में एक काम करने का नहीं होता, सारे काम साथ साथ चलेंगे। मतलब कुछ लोग कहते हैं अच्छा पहले मैं ये काम कर लूँ ना फिर मैं अपनी इस्लाह करूँगी, नहीं, रोज़मर्रा सफाई में जैसे आंखें कान दिल ज़ुबान आपकी मदद कर रहे हैं ना, इसी तरह से आपने इस बुरी आदतों पे भी साथ ही काम करना है, अच्छी बातों को भी अपनाना है, सोच का तज़किया भी करना है, दूसरी चीज़ों को भी दूर करना है। अब सवाल पैदा होता है, अभी जो बात की ना इसको सम अप करती हूँ, हम सब यहाँ क्यों बैठे, सफाई करनी है, ठीक है, तज़किया का मानी सफाई कर लूँ, खूबसूरत बनना है, साफ़ रखना है, किस तरह से, दो चीज़ें, नंबर एक ज़ाहरी, नंबर दो बातनी, ठीक है। ज़ाहरी ऑफ कोर्स हमने साफ़ रहना है, आप अगर नहा के नहीं आए तो कभी भी फोकस नहीं होंगे, पसीना आया होगा फोकस नहीं होंगे, ये सारा एहतमाम आपके लिए क्यों किया जाता है कि आपको कंफर्टेबल माहौल मिले, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखें कि अच्छी आदतें भी आपने सीखनी है तो बुरी भी ख़त्म करनी है। तीसरी बात है ये मुस्तकिल अमल है, आप डाइटिंग करते करते छोड़ दें पहले से ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, एक्सरसाइज करते करते छोड़ देंगे मोटे होंगे, ये ज़िंदगी भर का सफ़र है। अगली बात ये नोट कीजिएगा कि जब ज़ाहरी गंदगी ज़ाहरी नजासत दूर होती है तो बंदा सेहतमंद महसूस करता है, उसके साथ वाले उससे खुश होते हैं, ज़ाहिर है आप साफ़ सुथरे नहा धो के बैठे हो आप दूसरों को अच्छे लगेंगे, और बाल बिखरे और मुंह से बू आ रही तो साथ बैठे वाले के लिए आप एक परेशानी है। बिल्कुल इसी तरह से आप में खुद को बेहतर करके अपने साथ रहने वालों पे रहम करेंगे, कुछ साथियों पे रहम आता है कि उनके साथ वाले उनको बर्दाश्त कैसे करते हैं, कोई खूबी नहीं है, कोई हुसन नहीं है, कोई नज़ाकत नहीं है, कोई अदा नहीं है, कोई साफ़ सुथरी चीज़ नहीं, और अल्लाह तो कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत्तवाबीन व युहिब्बुल्मुतत्तहिरीन, अल्लाह को पाक रहने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। आपको पता है कि कुछ जानवर मट्टी में अपने आप को लोट पोट कर अपने आप को साफ़ कर लेते हैं, कभी आप बिल्ली को देखें अपनी दुम से अपने बाल झाड़ती रहती है, फालतू चीज़ें उसके जिस्म से जो उतरते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि दिल और दिमाग की तहारत ज़रूरी है। आपने मैंने इंशाल्लाह इस सफ़र में अपने दिल को भी पाक करना है, दिमाग को भी, सोचें भी अच्छी रखनी है, जिस्म को भी अच्छा रखना है, रूहानी और स्पिरिचुअली अपने आप को पाकीज़ा रखना है, और जितना ज़्यादा आप इसमें कोशिश करेंगे बेहतर होंगे। इमाम गज़ाली का नाम सुना होगा, आज तसव्वुफ़ में उनको बहुत यूज़ करते हैं लोग, उनकी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, उसी में से एक कोटेशन है, कहते हैं कि तज़किए के चार पहलू हैं, लिख लीजिए, यानी आपको मैं एक गोल देने लगी हूँ, आपने चार चीज़ों पे काम करनी है अगर आप अपने आप को खूबसूरत करना चाहते हैं। पहली बात है अकीदे की सफाई, अकीदे को पाक करना है शिर्क से। दूसरी बात दिल की सफाई, आपका दिल पाक होगा हसद से तकब्बुर से और निफाक से। तीसरी तहारत है जिस्म की, बुरी हरकतों से, बॉडी लैंग्वेज, बाज़ लोग हाथ हिलाते, बाज़ आंखें मटकाते, बाज़ ठुम ठुम चलते, हमारी शख्सियत का झोल है, पर्सनैलिटी में ऐसा ठहराव होना चाहिए कि आप जहाँ से गुजर जाएं लोग आप पे उंगलियाँ ना उठा सकें। और चौथा तज़किया होता है लिबास का और जिस्म का, गंदगी से पाक रखना। अगर आप अकीदे को शिर्क से और दिल को हसद तकब्बुर निफाक से पाक कर लें तो ये बाकी दो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी। आज हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये पहली दो चीज़ें पाक नहीं हैं। अच्छा, अब सफाई करनी हो तो कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, डिटर्जेंट, वाइपर, ब्रश, घरों में सफाई का अमल किया है ना, झाड़ू पोछा, तज़किए के लिए या इस सफाई के लिए भी टूल्स चाहिए। सवाल समझ रहे हैं मेरा, कि सफाई करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए सफाई करते हैं, तो सवाल पैदा होता है कि इन सफाइयाँ जो अकीदे की, सोच की, दिल दिमाग की सफाई है, इसका टूल क्या है। कुरान और सुन्नत, शाबाश, शरीयत के तकाज़ों से बाहर निकल कर तज़किया नहीं करना बेकार तरीके से। आज आप जाके देखिए कितना शिर्क और कितनी फहाशी फैली हुई है सिर्फ इसी चीज़ों के नाम पे, ये मेरे पीर साहब हैं, ये मेरी मुरीदनी है, और वो मुरीदनी को मतलब शरीयत की हदों से तजावज़ करके जो आपका तज़किया करता है वो गलत होगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसानों और जानवरों सब के अंदर अच्छे और बुरे का फ़र्क रखा हुआ है। सूरत शम्स आयत 8 में आता है फल हम हा फजूर हा व तकवा हा, हमने अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों में रखी हुई हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप फजूर यानी बुरी चीज़ों को आप लेके चल पड़ते हैं या अच्छी को ले आते हैं। आपने अंदरूनी तौर पे खूबसूरत बनना, अंदर सेहत होती है ना, स्किन खुद ही चमकती है, ग्लो करती है। और अगर अंदर बीमारी है, ऊपर जो मर्जी रंग रोगन लगा लीजिए, वो अजीब ही लगेगा, सजेगा नहीं आपको। आपने इंशाल्लाह, पहली बात है, दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट यू। ये कोर्स पूरे का पूरा आपके लिए है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का कोर्स है, आपकी करेक्टर बिल्डिंग का कोर्स है। और अगर आप कोई इंस्टीट्यूट रन करती हैं, मैं कहती हूँ आप किसी कीमत पे अपने इंस्टीट्यूट को अगर कामयाब देखना चाहते हैं ना, तो अपने स्टाफ को ये कोर्स करवा लें। आज मुश्किल लगेगा, कल सारी खैर आपको जाएगी। घर में शौहर हैं, अपनी बीवी को ये कोर्स करवा लें, घर के आधे झगड़े मसले ख़त्म होंगे, बाकी चीज़ें इसी से आगे सोच लीजिएगा। क्योंकि इंसान खूबसूरत है, खूबसूरती पसंद करता है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरतियों को पसंद करता है। तो हमने भी अपने आप को इसमें लेना है। ज़ाहरी शक्ल सूरत में अपनी नहीं बदल सकते, एक ख़ास हद से ज़्यादा, लेकिन आपके मेरे आगे मैदान खुला हुआ है। अंदर जितना मर्जी सजा लीजिए, कितना खूबसूरत कीजिए। आईना देखने की क्या दुआ मांगते थे अल्लाह के नबी, याद है? किस किस ने कभी मांगी है? मांगिए ज़रा। मुस्नद अहमद की ये रिवायत है, अल्लाहुम्मा कमा अहसनता खल्की फाहसिन खुलुकी। ए अल्लाह, जैसे तूने मेरी तख्लीक खूबसूरत की है, तू मेरा अखलाक भी खूबसूरत कर। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि इस्लाम में अखलाक क्या होता है, अच्छा अखलाक हमारे इस कल्चर में क्या है। बड़े बातूनी शख्स को कहते बड़ा बाखलाक है, जो पीछे पढ़ के आपको खाना खिलाए कहते हैं कितना बाखलाक है, लेकिन इस्लाम का मिजाज कुछ और है। इस पर इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। आज आप अपनी दोस्तें, आप किस, क्योंकि ये 2 या 3 दिन जो शुरू के ना, इसी में आपको ये ऑफर्स मिलेंगे। इसके बाद जो लोग आगे सो आगे, क्योंकि फिर अगर अधूरी बात सुनेंगे तो अधूरा तज़किया होगा। सूरह तौबा आयत 122 में अल्लाह ने एक बड़ा प्यारा मियार दिया, यही मैं भी आपको देने लगी हूँ। वमा कानल मोमिनून अलियन फिरू काफा फलौल नफर मिन कुल्ली फ़िरक़त मिन हम ताइफ़तुल्ली यतफक्कहू फ़िद्दीन वली युन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ लअल्लहुम यहज़रून। और ये कोई ज़रूरी ना था कि अहले ईमान सारे के सारे निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों ना हुआ कि इनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के बाशिंदों को खबरदार करते, ताकि वो गैर मुसलिमाना रविश से परहेज़ करते। जब ग़ज़वे तबूक में लोग कुछ मतलब गए और मैदान जंग में निकलने का इतना सवाब और अजर देखा, तो कहने लगे अब आइंदा मौका आएगा तो हम सारे ही जाएंगे। कहा नहीं, सब नहीं जा सकते, कुछ को काम भी करने हैं, कुछ को कुछ है। मेयार कह दिया, हर इलाके में से एक ग्रुप आता है, मैं आप सबको भी यही कहूँगी। और दूसरी बात देखिए कि जब ये सब काम आप करके वापस पलटेंगे तो क्या होगा, आप इस सोसाइटी में एक अच्छा रोल मॉडल होंगे। माशरे में उस्ताद का किरदार क्या है, इसको हम इसमें इंशाल्लाह टिप्स की सूरत में देखा करेंगे। पैगंबरी एक पेशा नहीं है, उस्ताद कौम के मेमार होते हैं। आप देखिए, अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं, ऊपर सबसे उस्ताद है, नीचे एक साइड पे तालिब इल्म है और दूसरी तरफ मुआशरा है। उस्ताद का मुकाम कोई नहीं पा सकता। अगर आप उस्ताद हैं तो पहले अपने आप को उस मुकाम पे खड़ा तो कीजिए कि लोग आपको रोल मॉडल बनाएं तो फिर खुशी महसूस करें। और फिर एक बात याद रखिए कि जितना इल्म लेंगे उतनी खशियत और तकवा आएगा। इस इल्म से आपको मुझे मुस्तकिल तकवा मिलता रहेगा। चंद सवाल हैं, मैं आपसे दोहराती हूँ, आप लिखिए। इवन आपने पूरे दौरे कुरान कई साल कई जगहों से कर लिए हैं और अब आप सोचते हैं कि आपने काफ़ी सुन लिया, अब तो बैठ के घर में अमल करूँगी। ऐसा नहीं होगा, जितना सुनेंगे उतना अमल ज़्यादा होगा। आप ऐसे लोगों में बैठे रहें ना जो हेल्थ की बातें करते रहें, हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी खाने खाओ, तो आपका भी दिल करने लग जाएगा। आप सैलड्स खाएंगे, सूखी रोटियां खाएंगे, और अगर आप बैठकर पकोड़े समोसे चाट और मज़े मज़े के खाने वालों में होंगे, वो कहेंगे सब ये खाओ, फ़र्क पड़ता है। आपके इल्म की महफिल में होना इस बात की दलील है कि आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सवाल कीजिए, क्या तकवा से मेरा दिल भर चुका है कि अब मैं मज़ीद तकवा ना लूँ? क्या मेरे अमल सारे दुरुस्त हो चुके हैं जो मुझे मज़ीद इल्म लेने की ज़रूरत नहीं है? क्या मेरा अखलाक संवर चुका है, क्या मेरा किरदार सुधर गया, यानी मेरी करेक्टर बिल्डिंग हो चुकी है, क्या मेरे दिल से बाहमी हसद और बुग़ज़ और नफ़रत मिट चुकी है, क्या हमारे ख़ानदानों और मुआशरों से मुनकरात और हराम चीज़ों और बुराइयों का खात्मा हो गया। अल्लाह की बना, लगता नहीं है कि हम मुसलमान मुल्क में बैठे हैं, इतनी बाहर खराबियाँ। तो अगर ये सब का जवाब यस में नहीं आया तो हमें मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। आपने मैंने जिस चीज़ पे मेहनत करनी है, जो सीखना है और जिसके ऊपर अमल करेंगे, वो है मुहासबा। किस चीज़ का मुहासबा? नोट कीजिएगा, पांच चीज़ों का मुहासबा आपने अपना करना है। नंबर एक, फ़राइज़ की अदायगी। आपने इंशाल्लाह इस कोर्स के दौरान अपनी पांच वक्त की नमाज से लेकर बाकी सारे फ़राइज़ पे ख़ुद को बांधना है। जिस तरह हम अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को चाहते हैं ना कि वो ऐसे हों, पहले हम ख़ुद तो हों, तो फ़राइज़ की अदायगी की पाबंदी इंशाल्लाह सीखेंगे। फिर कोई नेक अमल कर रहे हैं अगर, तो उस पर इस्तकामत के साथ जमना, ये नहीं कि रमज़ान आया तो खूब नेकियाँ और उसके बाद छोड़ दी। तीसरी चीज़, सिला रहमी, मुस्तकिल सीखेंगे आप कि मैं अपने साथ रहने वालों के साथ कैसा ताल्लुक़ रखती हूँ। फिर छुपा कर एलानिया सदका करना, कभी छुपा कर कभी एलानिया, क्योंकि ये बंदे की अल्लाह के साथ सच्चाई की दलील बन जाता है। और सबसे बढ़कर गुनाहों से बचना है। जब गुनाह का कोई मौका आता है तो उस वक़्त मैं अपने लिए कैसा समझती हूँ। अब सवाल है कि ये काम तो करने हैं, करूँ कैसे? अपना गोल बनाइए, आज के बाद की ज़िंदगी मैंने दाईया दीन बनना है, यानी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहना है, कुरान की क्लास से जुड़कर रहना है, घर वालों और दोस्तों को भी नेकी के कामों में साथ लेकर चलना है, बेहतरीन सदका जारिया छोड़कर जाना है, ये दुआ करें। और नेकी का काम छोटा हो या बड़ा करते ही रहना है, गुनाहों पर तौबा करनी है। देखिए, जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ही अल्लाह आपकी मदद करेगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।